पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र रूही को अंगूठी पहनाता है और उस पर अपना अधिकार जताता है। रूही विरोध करती है। दिशा और रूही अनाथ आश्रम में जाती हैं। इस अध्याय में रूही और दिशा नाश्ता करती हैं। दिशा रूही की उंगली में अंगूठी देखती है और सवाल करती है। सुबह सिंघानिया विला में हल्दी की रस्म की तैयारियां चल रही हैं। दिशा रूही को सिंघानिया विला चलने के लिए कहती है। रूही वहां जाने में हिचकिचाती है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 47। अब आगे अनाथ आश्रम में दिशा की बात सुनकर रूही की आंखों के सामने रुद्र की वे खतरनाक आंखें आ जाती हैं, जो रूही को हमेशा डराने के लिए काफी रहता था। दिशा की बात सुनकर रूही अपने दिमाग से रुद्र का ख्याल झटक दिशा से कहती है, दी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा आज यहीं पर रहकर आराम करने का मन था। रूही की बात सुनकर दिशा रूही के सर पर हल्का सा मारते हुए बोली, तू यहां अकेले रहकर क्या करेगी, बोर हो जाएगी, इसीलिए जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरा वेट करती हूं तब तक। दिशा की बात सुनकर रूही अब और दिशा को नहीं मना पाई और बिना मन के रेडी होने के लिए बाथरूम में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला में हल्दी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं और धनराज जी का परिवार और मीशा भी अपने येलो कलर की स्टाइलिश लहंगा और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किए पहुंच चुकी थीं, जिसे देख सुमन मीशा का नजर उतारते हुए कहती हैं, बहुत सुंदर लग रही हो बेटा तुम, आओ यहां बैठो, अभी कुछ देर में हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। सुमन जी की बात सुनकर मीशा मुस्कुराते हुए एटीट्यूड से कहती हैं, आंटी मैं खूबसूरत तो बचपन से ही हूं, पर फिर भी थैंक यू आपकी तारीफ के लिए। इतना बोल मीशा एटीट्यूड से वहीं बैठ जाती हैं। मीशा की बातों का सुमन जी बुरा नहीं मानती, लेकिन सुमन के पीछे खड़े अर्जुन और परी को मीशा का एटीट्यूड देख थोड़ा गुस्सा आता है और परी अर्जुन को देख कहती हैं, अर्जुन दादाजी ने भाई के लिए ऐसी लड़की पसंद की है, इसे तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, मुझे ये लड़की शुरू से ही अपनी भाभी के रूप में पसंद नहीं थी, खास ऐसा हो जाए कि रुद्र भाई इस लड़की की जगह की और लड़की से शादी कर ले जो प्यारी हो और उसे दूसरों से बात करने की तमीज हो। परी की बात सुनकर अर्जुन बोला, दिया पागल हो क्या, आप अगर प्यारी और मासूम लड़की की शादी मेरे उस शैतान भाई से करवाएगी तो रुद्र भाई का तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन उस प्यारी और मासूम लड़की की जिंदगी जरूर बर्बाद हो जाएगी। मेरे ख्याल से मेरे उस शैतान भाई के लिए इस तरह की थोड़ी घमंडी लड़की ही सही रहेगी। अर्जुन की बात सुनकर परी मुंह बनाती है मगर कुछ कहती नहीं और रूही को बुलाने के लिए दोबारा उसे फोन लगाने ही वाली होती है, तभी उसकी नजर आती हुई दिशा और रूही पर पड़ती है, जिसे देख परी खुश होते हुए दोनों के पास चली जाती है। परी रूही और दिशा के पास पहुंच बोली, रूही और दी आज तो आप दोनों काफो खूबसूरत लग रही हैं। परी की बात सुनकर रूही और दिशा परी को थैंक यू बोलती हैं। उसके बाद दिशा परी और रूही को देख बोली, तुम दोनों बात करो, मैं एक बार सर से मिलकर आती हूँ, जो काम है एक बार सर से समझ लूँ, फिर मैं तुम दोनों से मिलती हूँ। दिशा की बात सुनकर दोनों हाँ में अपना सर हिला देती हैं, जिसे देख दिशा देवांश के रूम की तरफ चली जाती हैं। वहीं रणवीर जी एक नौकर को बोल रुद्र को नीचे आने को बोल देते हैं, जिसे सुन वे सर्वेंट सीधा रुद्र के फ्लोर पर चला जाता है और दरवाजा नॉक करता है, जिसे सुन रुद्र दरवाजा खोल अपनी रौबदार आवाज में बोला, क्या है? रुद्र की बात सुनकर वे सर्वेंट डरते हुए बोला, बॉस वे दादाजी ने आपको नीचे हल्दी की रस्म के लिए बुलाया है। उस सर्वेंट की बात सुनकर रुद्र अपनी कड़क आवाज में ही बोला, दादाजी से जाकर बोल दो कि मैं कोई हल्दी की रस्म के लिए नीचे नहीं आऊंगा, तुम हल्दी लेकर आ जाओ, मैं रूम में ही वे रस्म कर हल्दी घिंचवा दूंगा। रुद्र की बात सुनकर सर्वेंट सर हां में हिला वापस चला जाता है। नीचे पहुंच वे सर्वेंट दादाजी को सारी बात बता देता है, जिसे सुन दादाजी अपने मन में बोले, ये लड़का कभी भी सुधर नहीं सकता, पर मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, वरना इस लड़के का क्या भरोसा शादी ही करने से मना कर दे। इतना बोल वे सुमन जी को बुलाते हैं, जिसे सुन सुमन जी दादाजी के पास आकर बोली, जी पापा आपने मुझे बुलाया। सुमन जी की बात सुनकर दादाजी बोले, हाँ बहू जाओ और हल्दी लेकर आओ जो रुद्र को लगानी थी, रुद्र नीचे नहीं आएगा हल्दी की रस्म के लिए तो तुम इस सर्वेंट के हाथ से रुद्र के रूम में ही हल्दी भिजवा दो, रुद्र खुद से ही हल्दी की रस्म कर हल्दी भिजवा देगा। दादाजी की बात सुनकर सुमन जी हाँ में सर हिला देती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रुद्र ने एक बार जो फैसला ले लिया वे वही करेगा, इसीलिए वे हल्दी ला उस सर्वेंट के हाथ से रुद्र के लिए हल्दी भिजवा देती हैं। वे सर्वेंट भी रुद्र के फ्लोर पर जा रुद्र के हाथ में हल्दी दे चला जाता है। वहीं उस सर्वेंट के जाने के बाद रुद्र दरवाजा बंद कर अपने हाथ में पकड़े हल्दी के बाउल को देख मुस्कुराता है और फिर अपने असिस्टेंट्स को फोन कर कुछ बोल उस हल्दी को ले नीचे चला जाता है। वहीं रुद्र का असिस्टेंट्स अमन जो अभी अभी सिंघानिया विला आया था, वे रुद्र की बात सुनकर अपने आप से ही बोला, ये मेरे शैतान बॉस मुझसे क्या क्या काम करवाते रहते हैं, हे माता रानी प्लीज मुझे बचा लेना। इतना बोल वे गार्डन एरिया में आता है और चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रूही को ढूंढने लगता है। तभी उसे रूही एक चेयर पर बैठी मुस्कुराती हुई सबको देखती हुई दिखाई दी, जिसे देख अमन रूही की तरफ बढ़ जाता है। रूही के पास पहुंच अमन रूही को देख हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो मिस रूही। अमन के बोलने से रूही का ध्यान भी अमन की तरफ चला जाता है, जिसे देख रूही अपनी प्यारी आवाज में बोली, जी बोलिए।
अमन एक पल के लिए तो रूही की खूबसूरती और उसकी प्यारी आवाज में खोसा ही गया था, लेकिन वे जल्दी ही होश में आते हुए रूही से बोला, मिस रूही प्लीज आप मेरा एक काम कर दीजिए, आप ये फाइल देवांश सर को दे आइए, वे गेस्ट रूम के सबसे पीछे वाले हिस्से में है। मैं खुद चला जाता लेकिन मुझे रुद्र सर ने तुरंत अपने पास बुलाया है, इसीलिए मैं लेट नहीं हो सकता, वरना सर मेरी जान ले लेंगे। आप प्लीज ये फाइल दे दीजिएगा देवांश सर को। रूही की बात सुनकर वे फाइल ले लेती हैं, क्योंकि उसे डर सिर्फ रुद्र का ही था, देवांश से उसे कोई डर नहीं था। वैसे भी उसने सोचा कि दिशा देवांश के पास गई ही है, वे जाकर फाइल दे दिशा को अपने साथ लेकर आ जाएगी।
वहीं रूही को फाइल लेता देख अमन एक चैन की सांस लेता है और अपना दूसरा काम करने के लिए चला जाता है। वहीं रूही भी विला के अंदर गेस्ट रूम के आखिरी रूम के पास चली जाती है, क्योंकि अमन ने उसे यहीं आने को बोला था। मगर जैसे ही वे उस रूम का दरवाजा खोल अंदर जाती हैं, वैसे ही कोई उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच दरवाजे को तुरंत लॉक कर देता है।